नमस्कार भारत, तारीख 2 जून दिन मंगलवार, मैं हूं विनीत खरे। चीन में 450 यात्रियों को ले जा रहा जहाज डूबा। भारत ने चीन और पाकिस्तान के बीच इकोनॉमिक कॉरिडोर पर जताई आपत्ति।
चाइनीज एम्बेसडर को बुला के प्रोटेस्ट दर्ज कराया, जो हमारे एम्बेसडर वहाँ हैं उनके थ्रू चीनी नेतृत्व के सामने विरोध दर्ज कराया।
भारतीय मौद्रिक नीति की समीक्षा के लिए आज है महत्वपूर्ण बैठक। एक नई फिल्म बताएगी 30 साल से हक के लिए लड़ रहे स्वतंत्रता सेनानी की दास्तान।
उसने बोला कि मेरे पिताजी फ्रीडम फाइटर है, इसलिए थोड़ा सा प्रायोरिटी ये होना चाहिए। तो उन्होंने बोला, क्या मालूम है आपके पिताजी फ्रीडम फाइटर है क्या है।
साथ में अखबारों की सुर्खियां और खेल की खबरें भी, लेकिन आइए सुनते हैं पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार दिलनवाज पाशा से। करीब 450 यात्री ले जा रहा एक जहाज दक्षिणी चीन में यांगजी नदी में डूब गया है। स्थानीय मीडिया की रिपोर्टों के मुताबिक 20 लोगों को बचा लिया गया है, जिनमें जहाज का कप्तान और मुख्य अभियंता भी शामिल हैं। उनके मुताबिक नानजिंग से चोनशिंग जा रहा यह जहाज तूफान में फंस गया था। भारी बारिश और तेज हवाओं के कारण राहत कार्य प्रभावित हो रहा है। चीन के प्रीमियर ली खचियांग दुर्घटना स्थल की ओर रवाना हो गए हैं। कनाडा की एक अदालत ने 3 अंतर्राष्ट्रीय तंबाकू कंपनियों को धूम्रपान करने वाले लोगों को 12.3 अरब अमरीकी डॉलर का हर्जाना देने का आदेश दिया है। इन धूम्रपान करने वालों का कहना है कि उन्हें सिगरेट से होने वाले नुकसान के बारे में आगाह नहीं किया गया था। कनाडा के इतिहास में यह अब तक का सबसे बड़ा हर्जाना है। यह मामला क्यूबेक प्रांत में धूम्रपान करने वाले 2 समूहों की ओर से दायर किया गया था। इन लोगों ने कानूनी कार्रवाई 16 साल पहले शुरू की थी। तीनों तंबाकू कंपनियों इंपीरियल टोबैको, रोथेम्स बेंसन और हेजेस एंड जेटीआई मैकडोनाल्ड इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगी। क्यूबेक काउंसिल के धूम्रपान विरोधी दल से जुड़े मारियो बुजोल ने कहा, तंबाकू पीड़ितों के लिए यह एक बड़ा दिन है। हम 16 सालों से इस फैसले का इंतजार कर रहे थे। यह एक लंबी प्रक्रिया थी, लेकिन अब हम मंजिल पर पहुंच गए हैं। यह तंबाकू पीड़ितों की कंपनियों के खिलाफ बड़ी जीत है। दक्षिण कोरिया में मर्स या मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम से मौतों के पहले मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक एक 58 वर्षीय महिला और एक 71 वर्षीय पुरुष की इस वायरस से मौत हो गई है। दक्षिण कोरिया ने इस बीमारी के अब तक 18 मामलों की पुष्टि की है। मरीजों के संपर्क में आए करीब 700 लोगों की कड़ी निगरानी की जा रही है और उन्हें अलग थलग रखा गया है। दुनिया भर में मर्स से अब तक करीब 500 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीमारी की करीब 3 साल पहले सऊदी अरब में पहचान की गई थी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने दक्षिण सूडान की सरकार से संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार संयोजक टोबी लेंजर को निष्कासित करने के फैसले को पलटने को कहा है। दक्षिणी सूडान के अधिकारियों ने लेंजर के निष्कासन का कोई कारण नहीं बताया है। बान की मून ने कहा कि लेंजर ने सबसे पिछड़े लोगों तक जान बचाने वाली मदद की पहुँच सुनिश्चित की थी। उन्होंने कहा कि दक्षिण सूडान में जारी गृह युद्ध के मद्देनज़र यह बेहद ज़रूरी था। दिसंबर 2013 में शुरू हुई हिंसा के बाद से दक्षिणी सूडान में 10,000 लोग मारे गए हैं। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा में नमस्कार भारत, आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी सुन रहे हैं। मैं हूं विनीत खरे। जैसा कि आपने समाचारों में सुना, चीन के सरकारी मीडिया के मुताबिक करीब 450 यात्रियों को ले जा रहा एक जहाज दक्षिणी चीन में यांगजी नदी है उसमें डूब गया है। ज़्यादा जानकारी के लिए दिलनवाज पाशा इस वक्त स्टूडियो में। दिलनवाज, बहुत ज़्यादा जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है, लेकिन अभी जो पहले 400 कहा जा रहा था यात्रियों की संख्या, अब 450 बताई जा रही है, क्या खबरें अभी तक मिल पाई हैं?
जी, चीन के सरकारी मीडिया के मुताबिक इस यात्री जहाज में करीब 450 लोग सवार थे, जिसमें 410 यात्री और चालक दल के 47 सदस्य सवार हैं। डूबने के वक्त जहाज पूर्वी शहर नानजिंग से दक्षिणी पश्चिमी शहर चोंगशिंग जा रहा था। द स्टार नाम का यह जहाज हुबेई प्रांत की जियानली काउंटी में डूबा है। स्थानीय मीडिया की रिपोर्टों के मुताबिक 20 लोगों को बचा लिया गया है। इनमें जहाज के कप्तान और मुख्य अभियंता भी शामिल हैं। उनके मुताबिक नानजिंग से चोनशिंग जा रहा है यह जहाज तूफान में फंस गया था और ये तूफान में फंसा जहाज डूब गया है। और शिन्हुआ की ही एक रिपोर्ट के मुताबिक वहां अभी बहुत तेज बारिश हो रही है, तेज हवाएं चल रही हैं जिसकी वजह से राहत और बचाव कार्य में बहुत बाधा आ रही है। इसी साल जनवरी में भी एक नाव हादसा हुआ था नानजिंग में जिसमें 22 लोग मारे गए थे और चीन के जो प्रीमियर हैं ली कशियांग वो दुर्घटना स्थल की ओर रवाना हो गए हैं। बाकी ज़्यादा जानकारियां अभी इस हादसे के बारे में नहीं मिल पा रही हैं। ये साफ है कि करीब 450 लोग फंसे हैं। ये लोग सैलानी थे जो थ्री जॉर्ज डैम है, एक बहुत बड़ा बांध चीन ने नानजिंग नदी पर बनाया है, उसको देखने के लिए लोग जा रहे तो बताया जा रहा है कि ज़्यादातर लोग जो हैं बुजुर्ग हैं, उनकी उम्र जो है 60 से 80 के बीच बताई जा रही है। बाकी ब्यूरो का अभी इंतज़ार है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा हादसा है नानजिंग नदी में और कई सौ लोग अभी वहां पर फंसे हुए हैं।
जी दिलनवाज, और मेरे सामने इस वक्त जो जिन्हुआ एजेंसी का आपने जिक्र किया और पीपल्स डेली चाइना है, उन दोनों के ट्विटर फीड्स हैं और बहुत सारी तस्वीरें जो उस इलाके से हैं वो सामने आ रही हैं। कुछ और जानकारी जो ग्लोबल टाइम्स है चीन का अखबार, वो बता रहा है कि जो जहाज़ का नाम है वो उसका नाम ईस्टर्न स्टार बताया जा रहा है और ये घटना करीब रात के 9:30 बजे ये दुर्घटना हुई। और जैसा कि आपने बताया कि अखबार भी कह रहा है कि जो तेज़ हवाएँ हैं और बारिश के कारण बचाव कार्य में रुकावट पेश आ रही है, लेकिन अभी भी कहीं भी जो अकाउंट्स मैंने पढ़े हैं दिलनवाज उसमें कहीं ये जिक्र नहीं है कि ये दुर्घटना कैसे घटी या क्या हुआ जिसके कारण ऐसा हुआ है। और जैसा कि आपने बताया कि प्रीमियर ली किचियांग जिस जगह दुर्घटना हुई है उस इलाके के लिए रवाना हो गए और जो राष्ट्रपति शी हैं उन्होंने राहत कार्य शुरू करने के आदेश दे दिए हैं। जैसे ही हमें और जानकारी मिलेगी हम श्रोताओं के सामने उसे लेकर आएंगे। भारत ने चीन और पाकिस्तान के बीच इकोनॉमिक कॉरिडोर पर सख्त आपत्ति जताई है। भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न केवल राजनीतिक माध्यम से बल्कि खुद चीनी नेताओं से मुलाकात के दौरान इस परियोजना की कड़ी आलोचना की थी। जानकारों के अनुसार भारत की मुख्य आपत्ति इस बात पर है कि यह कॉरिडोर पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर के उन इलाकों से गुजरेगा जिन पर भारत अपना दावा करता है। दिल्ली से संदीप सोनी की रिपोर्ट।
विदेश मंत्री सुषमा स्वराज मोदी सरकार का एक साल पूरा होने के मौके पर विदेश मंत्रालय का रिपोर्ट कार्ड जारी कर रही थीं। संवाददाता सम्मेलन में जब पाकिस्तान और चीन के बीच इकोनॉमिक कॉरिडोर का सवाल उठा तो सुषमा स्वराज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न केवल राजनयिक माध्यम से बल्कि खुद चीनी नेताओं से मुलाकात के दौरान इस परियोजना पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई थी।
देखिए, जहाँ तक पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर का सवाल है, हर बार जब पीओके में कोई गतिविधि होती है तो हम उनके एम्बेसडर को बुलाकर यहाँ अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराते हैं, लेकिन इस बार हमने केवल वहीं तक नहीं रखा। चाइनीज एम्बेसडर को बुला के प्रोटेस्ट दर्ज कराया, जो हमारे एम्बेसडर वहां हैं उनके थ्रू चीनी नेतृत्व के सामने विरोध दर्ज कराया, लेकिन जब प्रधानमंत्री वहां गए तब उन्होंने इस बात को बहुत दृढ़ता से कहा और इस मुद्दे को बहुत मजबूती से उठाया कि ये जो आपने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात की है और उसमें भी खासतौर पर पीओके में जाने की बात की है, ये हमें स्वीकार नहीं है।
जानकार मानते हैं कि भारत की मुख्य आपत्ति इस बात पर है कि ये इकोनॉमिक कॉरिडोर पाकिस्तान के उस हिस्से से गुजरेगा जिस पर भारत अपना दावा करता है। भारत की चिंता ये भी है कि इस रास्ते का इस्तेमाल सैन्य उद्देश्यों के लिए भी किया जा सकता है। पाकिस्तान के संबंध में भारत की विदेश नीति के बारे में पूछे जाने पर सुषमा स्वराज ने कहा,
हम हर मसले को शांतिपूर्ण वार्ता से सुलझाने के लिए तैयार हैं, ये पहला सिद्धांत। दूसरा, लेकिन वार्ता केवल दो देशों के बीच में होगी, हमारे और पाकिस्तान के बीच में। ना कोई तीसरा देश मध्यस्थता करेगा, ना कोई तीसरा तत्व पार्टी बनेगा, वार्ता में शामिल होगा, ये दूसरा प्रिंसिपल। और तीसरा, आतंक और हिंसा से दूर सद्भाव के वातावरण में बातचीत होगी।
पाकिस्तान और चीन के बीच 3000 किलोमीटर लंबे इकोनॉमिक कॉरिडोर का ऐलान इस साल अप्रैल में तब किया गया था जब चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग पाकिस्तान पहुंचे थे। ये कॉरिडोर पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह को चीन के शिनजियांग प्रांत से जोड़ेगा। इस परियोजना के तहत लगभग $46 अरब की लागत से सड़क और रेल मार्ग के साथ साथ पाइपलाइंस का बड़ा नेटवर्क तैयार किया जाएगा।
ये थी संदीप सोनी की रिपोर्ट। लेकिन इन भारतीय आपत्तियों का इस इकोनॉमिक कॉरिडोर के काम पर क्या असर पड़ेगा, या फिर ये मात्र रस्म अदायगी है? डीबीसी से बातचीत में सुरक्षा मामलों की जानकार सुशांत सरीन का कहना था।
देखिए, रस्मी भी है और अमली इकदाम जो हो सकते हैं मेरे ख्याल वो जरूर कंसिडर किए जाएंगे। अब वो सफारती तौर पर क्या किया जा सकता है, कितना प्रेशर बनाया जा सकता है इसको रोकने के लिए, ये तो देखना पड़ेगा। ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो मंसूबा है उसमें मसला ये है कि ये एक लिहाज से जो ग्राउंड सिचुएशन है उसमें एक मटीरियल और सब्सटेंशियल चेंज लेके आएगा, और इसलिए शायद जो ऑब्जेक्शन है वो ज्यादा शदीद है। एक सड़क बनी हो उसका एक अलग मतलब होता है, और फिर अगर वो इस तरीके का इकोनॉमिक कॉरिडोर बनता है उसके जो माने निकाले जाते हैं वो बिल्कुल दूसरे किस्म के हो जाते हैं, और इसीलिए इस तरह की ऑब्जेक्शन हो रही है कि एक सब्सटेंशियल और मटेरियल डिफरेंस ऑन ग्राउंड होगा इससे। इसमें एक लिहाज की डिप्लोमेटिक लेन देन भी है, क्योंकि अगर चीन बहुत सारे जो भारतीय मंसूबे हैं चाहे वो साउथ चाइना सी में हो या और जगहों पे हो, उसको वो अपना एरिया मान करके या डिस्प्यूटेड एरिया मान करके अगर ऑब्जेक्शन रेस करता है तो मेरे ख्याल उसमें थोड़ा सा टिट फॉर टैट का भी एक आंसर हो सकता है।
ये थे रक्षा मामलों की जानकार सुशांत सरीन। भारतीय मौद्रिक नीति की समीक्षा के लिए आज एक बैठक होने वाली है जिस पर बाजार के साथ साथ आर्थिक विश्लेषकों की भी नजर रहेगी। मौद्रिक नीति क्या होती है, किसी देश की अर्थव्यवस्था में इसकी क्या भूमिका होती है और बाजार से इसका क्या संबंध है, इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए संदीप सोनी ने बात की आर्थिक मामलों के जानकार परंजॉय गुहा ठाकुरता से।
भारतवर्ष या कहीं देश के अर्थव्यवस्था में जो सेंट्रल बैंक होता है, जो केंद्रीय जो बैंक होता है, जो हमारे भारतीय रिजर्व बैंक जैसे हैं, वो तैयार करते हैं कि कितना पैसा अर्थव्यवस्था के अंदर आना चाहिए। हर देश की अर्थव्यवस्था मौद्रिक नीति के ऊपर निर्भर करते हैं, साल में कई बार इसको ठीक करना पड़ता है। अर्थव्यवस्था के अंदर कितना मुद्रा आना चाहिए या नहीं आना चाहिए इसका असर पड़ता है अर्थव्यवस्था के ऊपर।
इस समय जो भारत की अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति है उसके हिसाब से देखें तो मौद्रिक नीति कितना महत्व रखती है?
कुछ दिनों से भारतवर्ष का अर्थव्यवस्था में हमारा जो सकल घरेलू उत्पाद है, सरकार का जो आंकड़ा दिया है इसमें कहते हैं कि हम जिस रफ्तार से बढ़ रहे पहले से आगे बढ़ रहे, बहुत कारण के लिए मुद्रास्फीति भी कम हो गया। कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारे ब्याज दर बहुत ज्यादा ऊपर है और इसको कम करना चाहिए, और हमारे जितने सारे उद्योगपति हैं उनका कहना यह है कि अगर ब्याज दर कम हो जाएगा तो लोग ज़्यादा निवेश करेंगे, अगर ज़्यादा निवेश करेंगे तो उद्योग या नया कारखाना आएगा और ये भी रोज़गार मिलेगा लोगों को। मगर भारतीय रिजर्व बैंक का जो गवर्नर है उनका और बहुत चीज़ के ऊपर वो उसको नज़रअंदाज करना पड़ता है। भारतीय रिजर्व बैंक वो भी सोचते हैं कि अगर ब्याज दर कम हो जाता है तो इसके असर मुद्रास्फीति के ऊपर भी पड़ सकते हैं। हमारे जो सेंट्रल बैंक है और जो भारतीय रिजर्व बैंक, इन दोनों के बीच एक संतुलन लाना बहुत जरूरी है। पहले भी जब ब्याज दर कम हुआ था बैंक अपना जिस रेट में लोगों को ऋण देते हैं वो इतना कम नहीं किया। भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर नाराज हो गए थे और उसके बाद कुछ बैंकों ने अपना जो दर में जिस रेट में लोगों को ऋण दे रहे वो भी कम कर दिया। तो अभी देखा जाएगा, वित्त मंत्री अरुण जेटली और वित्त मंत्रालय के जो आर्थिक सलाहकार है डॉक्टर अरविंद सुब्रमण्यम, दोनों ने साफ साफ कह दिया कि ब्याज दर कम होना चाहिए। मगर जो भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर है डॉक्टर रघुराम राजन है, वो अलग एक संवैधानिक पद है, वो अपने आप जो सोचेंगे उनका अपना सलाहकार होता है।
ये थे परंजॉय गुहार ठाकुरता। और अब बात मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के महिला एवं बाल विकास विभाग के एक प्रस्ताव को ठुकरा दिया है जिसमें 3 जिलों के आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों को अंडा देने की बात कही गई थी। जैन समाज इसका विरोध हमेशा से करता रहा है, लेकिन इस क्षेत्र में काम कर रहे सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि मुख्यमंत्री प्रदेश के बच्चों को प्रोटीन युक्त आहार से दूर कर रहे हैं। भोपाल से शुरेनी आजी की रिपोर्ट।
मध्य प्रदेश देश में कुपोषण के मामले में अव्वल स्थान रखता है। यहाँ पर लगभग 52% बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। यही वजह है कि प्रदेश के महिला एवं बाल विकास विभाग ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अलीराजपुर, मंडला और होशंगाबाद जिलों के बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों के जरिए अंडा देने का प्रस्ताव दिया। लेकिन जब यह प्रस्ताव मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने आया तो उन्होंने सिरे से इसे ठुकरा दिया। उनका कहना यही था कि वो इस बात को कह चुके हैं कि जब तक वो मुख्यमंत्री हैं तब तक वो इसे किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं करेंगे कि बच्चों को अंडा दिया जाए। सरकार इसके बदले में बच्चों को दूध और केला देगी। लेकिन इस फैसले को सामाजिक कार्यकर्ता गलत मान रहे हैं। एनजीओ राइट टू फूड से जुड़े सचिन जैन कहते हैं,
अपने आप में जिस तरीके का स्तर है मध्य प्रदेश में कुपोषण का और खासतौर पर गंभीर कुपोषण का, उस नजरिए से बच्चों को अंडे दिए जाने की पहल का की स्वागत की जाना चाहिए था, लेकिन इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया तो मुझे लगता है कि एक नजरिए से एक दुखदायी स्थिति है और इसके ऊपर कहीं ना कहीं पुनर्विचार तो होना ही चाहिए। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके का ढांचा हमारे मध्य प्रदेश में है, वहां पर यह तर्क भी नहीं दिया जा सकता है कि पूरी जनसंख्या जो है वो शाकाहारी है और अंडे का उपयोग नहीं करती है।
वहीं माना यह जा रहा है कि सरकार प्रदेश के प्रभावशाली जैन समाज को नाराज नहीं करना चाहती है, यही वजह है कि अंडे से दूरी बनाई जा रही है। जैन समाज के आदित्य मानिया जैन कहते हैं,
उनको आप दाल दलिया खिलाइए, उनको आप रोटी खिलाइए, उनको आप ब्रेड खिलाइए, उनको आप फल दीजिए ना, आप देखेंगे कि कोई भी डॉक्टर बीमारियों में क्या चीज देता, दाल दलिया देता। स्वाइन फ्लू क्या है? कल को अगर हमने अंडा खिलाया बच्चों को फिर स्वाइन फ्लू हो गए तो क्यों, कौन सरकार का पैसा खाना
है? महिला एवं बाल विकास के अधिकारी सप्ताह में 2 या 3 दिन बच्चों को अंडा देना चाहते थे ताकि उनकी सेहत को सुधारा जा सके, लेकिन जैसे ही इस बात की भनक जैन समाज को लगी उन्होंने इसका विरोध शुरू कर दिया और आखिरकार मुख्यमंत्री ने भी उनकी इस बात पर अपनी सहमति दे दी। सामाजिक कार्यकर्ताओं का तर्क है कि देश के कई प्रदेशों में बच्चों को अंडा दिया जा रहा है और उनकी सेहत में सुधार भी आया है, लेकिन शायद ये बात मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए आगे भी मुमकिन ना हो पाए।
भोपाल से ये थे शुरय नियाजी। और अब बात 80 साल के स्वतंत्रता सेनानी गौर हरिदास की, जिनकी कहानी बेहद चौंकाने वाली है। कारण ये कि गौर हरिदास स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की सूची में अपना नाम दर्ज कराना भूल गए थे और फिर अपना हक पाने के लिए उन्होंने 30 साल तक सरकार से संघर्ष किया। उनकी इस कहानी पर अब एक फिल्म भी बन रही है। मुंबई से सुशांत मोहन।
भारत में स्वतंत्रता सेनानियों को मिलने वाली छूट और रियायतों के बारे में तो सभी जानते हैं। उन्हें ये रियायतें मिलती हैं क्योंकि उन्होंने देश की आज़ादी के लिए लंबी लड़ाइयां लड़ी थीं। लेकिन कुछ ऐसे अभागे स्वतंत्रता सेनानी भी हैं जिन्हें आज़ादी के बाद भी लड़ना पड़ा ये साबित करने के लिए कि वो भी स्वतंत्रता सेनानी हैं।
मैं वहाँ जाकर के मुझे बोला ना कि भाई आप लगते नहीं है इतना एजेड और फ्रीडम फाइटर की, हम आपको कैसे रिकमेंड करें।
ये आवाज है 80 साल के गौर हरिदास की, जिन्होंने 8 साल से लेकर 12 साल की उम्र तक आजादी की लड़ाई में अपने पिता का साथ दिया। लेकिन आजादी से पहले ही पिता की मौत हो जाने से उनके योगदान को लोग भूल गए।
मेरा बड़ा लड़के का पढ़ाई का आया कुछ ऐसा इंस्टेंस, तो उसको VJTI में एडमिशन के लिए उसने कोशिश किया, तो उसने बोला कि मेरे पिताजी फ्रीडम फाइटर है इसलिए थोड़ा सा प्रायोरिटी ये होना चाहिए। तो उन्होंने बोला क्या मालूम है आपके पिताजी फ्रीडम फाइटर है क्या है, हम लोगों को तो किसी को जानकारी नहीं है, कुछ प्रूफ है क्या।
महाराष्ट्र मुंबई के दहिसर इलाके में रहने वाले गौर हरि को भारत सरकार के सामने ये साबित करने में 40 साल लग गए कि वो भी अपने पिता के साथ आज़ादी की लड़ाई में शामिल थे और इस बीच उन्होंने बहुत कुछ खोया।
एक चीज है, ये जो फ्रीडम फाइटर का जो रिकॉग्नाइजेशन है ना, वो एक अलग ढंग से होता है, उसके लिए कुछ प्रोसीजर होता है, उसको ताम्र पत्र मिलता है, सम्मान पत्र मिलता है, गवर्नमेंट उनको देता है एज ए फ्रीडम फाइटर। वो कुछ था नहीं मेरे पास, तो वहाँ मैंने एप्लीकेशन दिया जस्ट टू रिकॉग्नाइज मी एज ए फ्रीडम, तो दिया। उसके अंदर करीब कम 80-85% जो है ना पॉजिटिव एटीट्यूड में चला, मैंने मुझे लगा कि अब मुझे मिल जाएगा। कुछ समय कुछ मिनिस्ट्री चेंज हो गई तो उसके अंदर मिनिस्टर बदल गए, तो हमारे मिनिस्टर की तरफ से स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन था कि महाराष्ट्र के अलावा दूसरा कोई भी स्टेट का फाइल मेरे पास में नहीं भेजा। फाइल भेजने के बाद मुझे अमुक टाइम में एक चिट्ठी आया कि भाई यू आर नॉट एलिजिबल टू रिसीव एनी रिकॉग्नाइजेशन फॉर द महाराष्ट्र गवर्नमेंट सिंस यू पार्टिसिपेटेड दिस मूवमेंट इन ओडिशा स्टेट, सो बेटर यू अप्रोच ओडिशा गवर्नमेंट, ही विल फाइनलाइज।
गौर हरिदास की जिंदगी पर अब गौर हरिदास्तान के नाम से एक फिल्म बन रही है जिसमें अभिनेता विनय पाठक गौर हरिदास का रोल निभाने वाले हैं। और इस फिल्म के निर्माता निर्देशक अनंत महादेवन ने बीबीसी से बातचीत में बताया,
जब मैं उनके पास गया और मैंने कहा कि मैं आपके ऊपर फिल्म बनाना चाहता हूं, तो उनका सबसे पहला रिएक्शन ये था कि मेरे ऊपर क्यों। वो इतने हम्बल थे कि शायद कोई और होता तो ये मौका हाथ से जाने नहीं देता कि हाँ प्लीज बनाइए, मुझे बहुत कुछ कहना है। उन्हें कोई ऐसी ये नहीं थी कि मुझे मेरे ऊपर फिल्म बनाओ। फिर मैंने उनको कन्विंस किया कि देखो आपकी जो संघर्ष है वो लोगों के सामने आना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि देखो मुझे वैसे तो सब कुछ याद नहीं है, उतना क्लियर याद नहीं है, लेकिन मैं आपको कुछ दे सकता हूँ। और वो अंदर चले गए अपने घर के अंदर और एक बहुत एक मोटा सा फाइल लेके आए, बॉक्स फाइल, और उन्होंने कहा कि ये वो चिट्ठियाँ हैं जो मैंने गवर्नमेंट को, सरकार को लिखा था, और उनके रिप्लाइज भी हैं इसमें। तो इनमें से अगर आप एक कहानी या एक फिल्म बना सकते हैं तो आप बनाइए। तो दैट्स आई हैव कॉल्ड इट गौर हरिदास्तान द फ्रीडम फाइल, क्योंकि वो फ्रीडम फाइल उनके लिए सेकेंड वॉर था। एक फ्रीडम फाइट ब्रिटिश के खिलाफ और एक फ्रीडम फाइट अपने ही लोगों के खिलाफ, क्योंकि वो अपने आप को साबित करना चाहते थे।
गौर हरिदास को उम्मीद है कि इस फिल्म के बाद शायद दुनिया को उनकी पीड़ा के बारे में पता चलेगा, लेकिन वो जानते हैं कि जो समय बीत चुका है वो अब वापस नहीं लौटेगा। चिरांतना भट्ट के साथ सुशांत मोहन, बीबीसी मुंबई।
और अब जानते हैं आज के अखबार क्या कह रहे हैं। दिलनवाज पाशा स्टूडियो में है हमारे साथ। दिलनवाज, आपसे आने से पहले एक खबर जिस पर मेरी निगाह गई है, पी चिदंबरम जो पूर्व वित्त मंत्री हैं, कांग्रेस के नेता हैं, उनका इंटरव्यू छपा है टाइम्स ऑफ इंडिया में। सागरिका घोष, वरिष्ठ पत्रकार, उन्होंने कहा है, उन्होंने लिया है, और एक बेहद दिलचस्प स्टेटमेंट है। पी चिदंबरम कह रहे हैं कि पूर्व में भी कांग्रेस के जो प्रमुख हैं वो नॉन नेहरू गांधी, जो नेहरू गांधी नहीं है वो रह चुके हैं, तो भविष्य में भी ऐसा हो सकता है, और इसको प्ले अप काफी किया जा रहा है इस इंटरव्यू में।
जी बिल्कुल, कयास लगाए जा रहे हैं कि राहुल गांधी जल्द ही कांग्रेस के अध्यक्ष बन सकते हैं, तो उसको थोड़ा सा ये विपरीत खबर जा रही है, यानी गांधी परिवार के बाहर भी कोई बन सकता है। खैर, बात आज के अखबारों की। आज के सभी अखबारों ने पहले पन्ने पर कारगिल युद्ध के दौरान जान गंवाने वाले भारतीय सैनिक कैप्टन सौरभ कालिया से जुड़ी खबरें प्रकाशित की हैं। भारत सरकार ने सोशल मीडिया पर बहस के बाद इस मामले में अपना रुख बदल लिया है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा है कि भारत सौरभ कालिया के मामले को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ले जाएगा। पहले सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र देकर कहा था कि अगर ऐसा किया तो पाकिस्तान शायद नाराज हो जाए। इसी खबर पर जनसत्ता का शीर्षक है, शहीद कालिया का मुद्दा उठाएंगे अंतर्राष्ट्रीय अदालत में। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाचार एजेंसी UNI को दिए साक्षात्कार में कहा कि वे किसी समुदाय के खिलाफ हिंसा बर्दाश्त नहीं करेंगे। नरेंद्र मोदी के साक्षात्कार से जुड़ी खबरें भी ज्यादातर अखबारों के पहले पन्ने पर हैं। नव भारत टाइम्स मोदी की तस्वीर के साथ लिखता है, माहौल गर्माने वालों पर गर्म। हाल ही में हरियाणा के बल्लभगढ़ में गांव में घर जलाए जाने के बाद मुसलमानों ने थाने में शरण ले रखी है और अल्पसंख्यकों के सुरक्षा के सवाल उठाए जा रहे हैं।
जी, और एक ये इसी से जुड़ी एक तस्वीर, काफी बड़ी सी तस्वीर इंडियन एक्सप्रेस में छपी है दिलनवाज।
पहले पन्ने पर एक महिला और उनकी बेटी टेंट से बाहर झांक रही हैं। और हिंदी अखबार नवभारत टाइम्स ने पहले पन्ने पर एक तस्वीर प्रकाशित की है जिसमें ट्रैफिक हवलदार और स्कूल जाते बच्चों को मास्क पहने दिखाया गया है। इस काल्पनिक तस्वीर के जरिए कहा गया है कि दिल्ली में इस हाल में होंगे बच्चे, यानी दिल्ली में जो वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है उस पर ये एक नजरिया पेश किया गया है कि यदि इसमें सुधार नहीं किया गया तो जल्द ही हालत बेहद भयावह हो जाएंगे। और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने पहले पन्ने पर प्रकाशित एक खबर में विश्व स्वास्थ्य संगठन के हवाले से कहा है कि वायु प्रदूषण सबसे खतरनाक स्तर पर है और सबसे खतरनाक बीमारियों को जन्म दे रहा है। कल शाम दिल्ली में हुई हल्की बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया था और गर्मी से बेहाल लोगों को कुछ राहत मिली थी। नई दुनिया अखबार ने दिल्ली की भीगी सड़कों की तस्वीर प्रकाशित करते हुए लिखा है, दिल्ली में चार दिन की चांदनी। और इसी अखबार की एक अन्य खबर है कि मानसून की पहली बारिश जोरदार होगी और 5 जून तक केरल के तट पर मानसून दस्तक दे देगा और उससे पहले भी बारिश हो सकती है। सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली और VVS लक्ष्मण को BCCI ने सलाहकार नियुक्त किया है। जनसत्ता ने यह खबर पहले पन्ने पर दी है। दैनिक भास्कर ने मैगी में मिलावट को पहली खबर बनाते हुए शीर्षक दिया है, विज्ञापनों में आने वाले सेलिब्रिटी पर भी कार्रवाई संभव, यानी टेलीविजन पर आप जिन सिने सितारों को मैगी बेचते हुए, मैगी का विज्ञापन करते हुए देखते रहे हैं, उनके खिलाफ भी मैगी मामले में कार्रवाई की जा सकती है। आज के अखबारों में देश के नए मुख्य सूचना आयुक्त और मुख्य सतर्कता आयुक्त को लेकर भी कयास लगाए गए हैं। वरिष्ठ सूचना आयुक्त विजय शर्मा, CIC और केंद्रीय सतर्कता बोर्ड के पूर्व चेयरमैन KV चौधरी नए CVC बन सकते हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर के मुताबिक दिल्ली सरकार भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए बिहार के पुलिस अधिकारियों की सेवाएं लेंगी। कहा गया कि बिहार से कुछ पुलिस अधिकारी उधार लिए जाएंगे। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक कर्नाटक जयललिता को बरी किए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चुनौती देगा। और जिक्र नई दुनिया की एक और खबर का, दिल्ली में कहा जाता है कि स्कूलों में जब एडमिशन कराने माँ बाप जाते हैं तो उनसे डोनेशन मांगी जाती है, और अब डोनेशन खोर स्कूलों पर दिल्ली सरकार ने सख्त रवैया अख्तियार किया है। सरकार ने कहा है कि जो माँ बाप जा रहे हैं वो रिकॉर्डिंग करके भेज दें, दिल्ली सरकार कार्रवाई करेगी।
शुक्रिया दिलनवाज आपका। और अब खेल समाचार।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। रोला गैरा की लाल बजरी पर खेले जा रहे फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में कल चौथे दौर के मुकाबले खेले गए, जहां स्पेन के डेविड फेरर ने बोस्निया एंड हर्जेगोविना के मारिन चिलिच को 6-2, 6-2, 6-4 से, और दूसरी वरीयता हासिल स्विट्जरलैंड के रॉजर फेडरर ने फ्रांस के गेल मॉनफिल्स को 6-3, 4-6, 6-4, 6-1 से मात दी। तीसरी वरीयता हासिल ब्रिटेन के एंडी मरे ने फ्रांस के जेरेमी चार्डी को 6-4, 3-6, 6-3, 6-2 से हराया। इनके अलावा स्पेन के राफेल नडाल ने अमेरिका के जैक सॉक को 6-3, 6-1, 5-7, 6-2 से बात दी। वहीं महिला एकल वर्ग में चेकोस्लोवाकिया के लूसी सफारोवा ने बड़ा उलटफेर करते हुए दूसरी वरीयता हासिल रूस की मारिया शारापोवा का सफाया कर दिया। उन्होंने 7-6, 6-4 से मुकाबला अपने नाम किया। उनके अलावा वेनेजुएला की गार्बिने मुगुरोजा ने इटली की फ्लाविया पेनेटा को 6-3, 6-4 से मात दी। अन्य मुकाबलों में इटली की सारा ईरानी ने जर्मनी के जूलिया जॉर्जिस को 6-2, 6-2 से हराकर बाहर का रास्ता दिखाया। शीर्ष वरीयता हासिल अमेरिका की सेरेना विलियम्स भी अपना मुकाबला जीतने में कामयाब रही, और उन्होंने अपनी ही हमवतन स्लोनी स्टीफंस को 1-6, 7-5, 6-3 से मात दी। उधर इटली में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में भारतीय पहलवानों ने जमकर अपने दाव पेच दिखाए और कुल मिलाकर 8 स्वर्ण पदक और 1 कांस्य पदक सहित 9 पदक अपने नाम किए। पहले तो अमित कुमार, योगेश्वर दत्त, परवीन राणा और नरसिंह यादव ने अपने अपने भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीते, तो उसके बाद सोनू ने 61 किलोग्राम भार वर्ग, सोमवीर ने 86 किलोग्राम भार वर्ग, मौसम खत्री ने 97 किलोग्राम भार वर्ग और हितेंद्र ने 125 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीते, तो रजनीश ने 65 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया। उधर लीड्स में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है, जहां कल खेल के चौथे दिन न्यूजीलैंड ने अपनी दूसरी पारी 8 विकेट पर 454 रन के स्कोर पर समाप्त घोषित कर इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 55 रनों का लक्ष्य रखा। इससे पहले दोनों टीमों ने अपनी पहली पारी में समान रूप से 350-350 रन बनाए थे। कल बारिश के कारण जब खेल रुका तब इंग्लैंड ने अपनी दूसरी पारी में बिना किसी नुकसान के 44 रन बना लिए थे। इससे पहले न्यूजीलैंड के बीजे वॉटलिंग ने 120 रनों की शतकीय पारी खेली, जबकि सलामी बल्लेबाज मार्टिन गप्टिल ने 70, मार्क क्रिक ने नाबाद 58 और कप्तान ब्रेंडन मैकुलम ने 55 रन बनाए। कप्तान ब्रेंडन मैकुलम ने दूसरी पारी 8 विकेट पर 454 रन के स्कोर पर समाप्त घोषित कर अपने गेंदबाजों को मौका दिया, लेकिन खेल का अधिकांश समय बारिश की भेंट चढ़ गया।
ये थे आदेश कुमार गुप्त। और अब चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर।
कम से कम 450 यात्री ले जा रहा एक जहाज दक्षिण चीन में यांगजी नदी में डूब गया है। स्थानीय मीडिया की रिपोर्टों के मुताबिक 20 लोगों को बचा लिया गया है। कनाडा की एक अदालत ने 3 अंतर्राष्ट्रीय तंबाकू कंपनियों को धूम्रपान पीड़ितों को 12.3 अरब अमेरिकी डॉलर का हर्जाना देने के आदेश दिए हैं। ये कनाडा के इतिहास में अब तक सबसे बड़ा हर्जाना है। दक्षिण कोरिया में मर्सिया मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम से मौतों के पहले मामले सामने आए हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने दक्षिण सूडान की सरकार से संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार संयोजक टोबी लेंजर को निष्कासित करने के फैसले को वापस लेने को कहा है। अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट ने उस मुस्लिम महिला के पक्ष में फैसला दिया है जिसे ओक्लाहोमा प्रांत में हिजाब पहनने के कारण नौकरी नहीं दी गई थी। चीन म्यांमार सीमा पर सैन्य अभ्यास कर रहा है। बीबीसी समाचार।
शुक्रिया दिलनवाज पाशा और शुक्रिया देवशीष कुमार का भी जो स्टूडियो संभाल रहे थे। इसी के साथ मुझे विनीत खरे को सभी सहयोगियों के साथ दें अनुमति। श्रोताओं से हमारी मुलाकात होगी ठीक एक घंटे बाद विश्व भारती में।